అపర్యాప్తం తదస్మాకం ఫలం భీష్మాభిరక్షితం పర్యాప్తం తదమేతేషాం ఫలం భీమాభిరక్షితం. కల్ దేఖ్ రహే థే కురుక్షేత్ర మే దోనో తరఫ్ కీ సేనా ఏకత్ర హై ఔర్ యుద్ధ హోనే కీ తయారీ హో రహీ హై. कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हो रहा है, लेकिन ये चर्चा हो रही है धृतराष्ट्र के राजमहल में. धृतराष्ट्र ने जब पूछा संजय से कि युद्ध में क्या हुआ, तब संजय उसका वर्णन कर रहे हैं. संजय को वहीं बैठे बैठे, राजमहल में बैठे बैठे सारा युद्ध का दृश्य दिखाई दे रहा है. वहाँ जो कुछ बातचीत हो रही वो भी सब उनको सुनाई दे रही है. इतनी दूर से उनको ये सब कैसे मालूम हुआ, इसका भी कारण है कि व्यास जी जो हैं वो महान योगी हैं. उनको दूर की वस्तु दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, और उनको ये भी सामर्थ्य है कि जिसको वो ऐसी शक्ति दे दें उसको भी दिखाई सुनाई देने लगे. जब युद्ध होने जा रहा था उसके पहले व्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए और कहा कि देखो ये युद्ध तो रोके रुकेगा नहीं, ये बाप महान युद्ध होने जा रहा है, बड़ा ऐतिहासिक युद्ध होगा और एक प्रकार से दर्शनीय है, इसे देखना चाहिए कैसा युद्ध होता है. इसलिए अगर आप चाहो तो हम आपको दिव्य दृष्टि दे दें, यौगिक दृष्टि दे दें, जिससे कि तुम जो है युद्ध क्षेत्र में जो कुछ घटनाएं घट रही वो सब तुम देख सको. धृतराष्ट्र को हिम्मत नहीं पड़ी ये सब देखने के लिए. कहा कि हम अपने आंखों से अपने वंश का विनाश होते हुए कैसे देंगे, महान दुख होगा, इसलिए हम देखना नहीं चाहते युद्ध जैसा होता हो. तब उन्होंने संजय से कहा कि देखो संजय, हम तुमको ये दिव्य दृष्टि दिए देते हैं, तुम इसको देखो, ये युद्ध कैसा हो रहा है, जरूर पड़े तो धृतराष्ट्र पूछे तो उनको बता भी देना. इसलिए फिर व्यास जी उनको वही दृष्टि दे गए, जिससे कि संजय को यौगिक दृष्टि से युद्ध भूमि में होते हुए सारी घटनाओं का उनको सबको दिखाई देता रहा, उसको सब जानते रहे. वैसे ही उनको जैसा ज्ञान था, जाना देखा हुआ था, वैसे ही फिर उन्होंने धृतराष्ट्र को सब बताया भी. इससे ये ज्ञात होता है कि गीता ग्रंथ जो है वो भगवान ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में सुनाया, अर्जुन ने सुना, जाना, समझा, लेकिन संजय ने भी सुना, संजय ने भी जाना, और वही जाना जो भगवान ने अपने मुख से बोला था. जैसे अर्जुन ने भगवान के मुख से बोला हुआ गीता सुना, वैसे ही संजय ने भी भगवान के मुख से सुना हुआ वैसे ही गीता सुना. और व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने तो वो योगिक शक्ति संजय को दी ही थी, उनके पास तो उस प्रकार की शक्ति थी ही थी, इसलिए व्यास जी ने वो युद्ध देखा. और जो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया वो व्यास जी ने भी सुना. भगवान ने जो कुछ अर्जुन को उपदेश दिया वो तो बोलचाल की भाषा में था, अर्जुन पूछता जाता था, भगवान बोलते जाते थे. अब बोलचाल की भाषा गद्य की भाषा होती है, कोई पद थोड़ी कविता बना बना के थोड़ा बोलता. ऐसे भगवान जो है अपने बोलते जाते थे, अर्जुन ये पूछता जाता था, और ये बोलचाल की भाषा थी. और संजय ने भी जो धृतराष्ट्र को सुनाया तो उसी बोलचाल की भाषा में सुनाया, जो कुछ जिस प्रकार का था. तो संजय ने कोई उसको श्लोकबद्ध नहीं किया, वैसे ही जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था वैसे ही अर्जुन को सुना भी दिया. लेकिन व्यास जी ने जो कुछ सुना भगवान के मुख से, जो कुछ गीता सुना, फिर उनको तो महाभारत ग्रंथ लिखना था. जब ग्रंथ लिखा उसमें तब ये गीता का जो है ये प्रसंग वहाँ पर भी आया. तो जैसा व्यास जी ने भगवान के मुख से सुना था वैसा ही फिर उन्होंने श्लोकबद्ध करके लिखा. तो अब ये स्थिति इस प्रकार की है, इसलिए कभी कभी ये सब बातों को न जानने के कारण अनेक प्रकार के प्रश्न उपस्थित होते हैं. क्या भगवान को ये गीता रटी हुई थी और इतने श्लोक भगवान ने अर्जुन के सामने वो जैसे कोई पाठ करता है बोलते चले गए थे? क्या इतनी देर तक ये सब जो है वो अर्जुन खड़ा रहा और युद्ध रुका रहा, इस प्रकार से बोला? तो ये सब पृष्ठभूमि न ज्ञात होने के कारण से लोग इस प्रकार की शंकाएं करते हैं. अब ये ध्यान रखें कि ये गीता का जो कुछ गीता यहाँ व्यास जी कह रहे हैं ये कहाँ चल रही है? धृतराष्ट्र का वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र ने एक दिन जब भीष्म वर्मा ने जब भीष्म सैया पर पड़े तब धृतराष्ट्र ने संजय से जानकारी चाही कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या विशेष बात हुई युद्ध क्षेत्र में, युद्ध तो हुआ लेकिन कोई विशेष बात भी हुई, माने तो ये जानना चाहते थे कोई विशेष व्यक्ति मरा, महारथी मरा या कुछ और कोई घटना घटी। तो संजय ने उनको बताया कि और घटनाएं घटी वो तो बाद में घटी, लेकिन सबसे बड़ी घटना तो पहले दिन घटी जब अर्जुन को मोह हुआ और भगवान कृष्ण ने उसको गीता का उपदेश सुनाया और वो सब गीता का उपदेश जो है उनको सुनाने लगे। ये भी आपको बताया कि इन सबको आप ये ध्यान में रखें कि ये सब जो घटनाएं घटी युद्ध क्षेत्र में उनको निरा ऐतिहासिक न माने, कोशिश करें ये कि इनको सबको अपने अंदर देखने की प्रयास करें। जैसे धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र का अर्थ है धृत माने धारण किए हुए, राष्ट्र माने राष्ट्र को, जिसने कि राष्ट्र के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया हो उसका नाम है धृतराष्ट्र। ये राष्ट्र पांडु का था, पांडवों का था, लेकिन धृतराष्ट्र ने उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। पहले भी ये राज्य पांडु का था, महाभारत का युद्ध हुआ कुछ काल तक इनका कब्जा रहा धृतराष्ट्र का, दुर्योधन का, और उसके बाद युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध हुआ उसके बाद ये राष्ट्र फिर पांडवों के हाथ में चला गया, लेकिन धृतराष्ट्र ने बीच में अनधिकार चेष्टा करते हुए उसके ऊपर अपना कब्जा रखा। इसी का नाम अज्ञान है, अज्ञान, हृदय की आंखों का बंद होना यही है। और धृतराष्ट्र ही क्या, अपने अंदर देखो तो हम सब लोगों के ये धृतराष्ट्र की वृत्ति हम सब लोगों के अंदर विद्यमान है। इस शरीर में आए, इस जीवन को जिया, यहाँ पर ना अपना शरीर, न शरीर से संबंध रखने वाली अपनी कोई वस्तुएं, शरीर छोड़ करके चले जाते हैं उसके बाद में भी ये सब वस्तुएं नहीं रह जाती हैं, छूट भी जाती हैं, लेकिन मध्य में शरीर मेरा, शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं मेरी, उनके ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए सारा जीवन चलाते हैं। ये लगता है ये सब मेरा है, सब मेरा है, मेरा है, और उस मेरे मेरे के कारण से कितने संघर्ष होते हैं, कितने युद्ध होते हैं, कितने लोगों के कोर्ट में जाकर के कचहरी में देखो तो कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, और मेला किस बात का लगा हुआ है, कोई कहता ये मेरा है, कोई कहता ये मेरा है, बस मेरा मेरा का वहां पर जो है मेला लगा हुआ है। और आखिरकार में जो जीत जाते हैं वो भी शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, और जो हार जाते हैं वो भी शरीर छोड़ करके चले जाते हैं, कोई इसको पकड़ करके हमेशा रख नहीं सकता। लेकिन अज्ञान के कारण, व्यापक बुद्धि न होने के कारण, तुच्छ बुद्धि, सीमित क्षुद्र बुद्धि के कारण केवल मध्य में ही उतनी वस्तु को पकड़े बैठे रहते हैं और अपना अपना बोलते रहते हैं। शास्त्र यही कहता है कि देखो जीव अपनी बुद्धि को व्यापक बनाओ, जो पिछले जन्म में चले आ रहे हो, आगे भी आगे जन्म होने वाला है, इन सबको ध्यान में रख करके फिर जीवन जियो। जो कुछ शरीर प्राप्त है इस जीवन में, जो कुछ वस्तुएं प्राप्त हैं, इनको अपना करके मत मानो, मानसिक रूप से, ऊपर के रूप से जो कुछ व्यवहार में आ रही है, प्रयोग में आ रही है, जिनसे जीवन चल रहा है चलने दो, लेकिन कहीं भी अपने मन से, अपने बुद्धि से उसको मेरा है करके मान करके जहां बैठे, बस वहीं से धृतराष्ट्र की तरह से रोना पड़ेगा। जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए तो उसके बाद धृतराष्ट्र रोने लगे। बस वो रोने की समस्या जो है वो हो जीवन में क्यों आती है, अटैचमेंट के कारण से। जिसको जितना ज्यादा अटैचमेंट यहाँ की वस्तुओं में, उतना ही ज्यादा व्यक्ति को दुख होता है। गुरुदेव एक कहानी छोटी से सुनाते थे, वो ध्यान रखने चाहिए, सब प्रैक्टिकल बातें हैं, चुटकुले हैं, अपने को याद रखने के लिए बड़े काम के हैं। उन्होंने बताया कि एक बार एक व्यक्ति, कुछ लोग गए गंगा जी स्नान करने के लिए, एक व्यक्ति था उसके साथ और भी कुछ लोग थे, वे सब लोग गंगा स्नान गए, कपड़े उतारे, गंगा जी में प्रवेश किया, नहाए, लेकिन एक व्यक्ति वो जब नहा रहा था और कमर तक अपने पानी में घुसा हुआ था, तो उसने देखा कि ऊपर की तरफ से जो धार बहती चली आ रही पानी की, उसमें एक छड़ी बहती चली आ रही। जब पास आई तो देखा उसने कि उसमें छड़ी में तो चांदी की मुठ लगी मालूम पड़ती है, तो उसने सोचा किसी की छड़ी गिर गई, लांग उठा ले, और उसने जब पकड़ने को दौड़ा तो पानी के हिलकोर लगी, तो थोड़ा वो धारा की तरफ और भीतर की तरफ और बह गई, तो ये तैर करके वहां तक गए और छड़ी पकड़ी और लेकर के किनारे की तरफ आने लगे। लेकिन जब तैर करके किनारे आने लगे तो वो छड़ी हाथ से फिर तैरने के बीच में छड़ी फिर हाथ से छूट गई, और जब तक कि किनारे तक आवे तो देखा कि वो तो बही जा रही, अभी इतनी दूर बह गई कि वहां से ला भी नहीं सकते हैं, तो बस खड़े होकर के चलाने, हाय हाय मेरी छड़ी चली गई, हाय हाय मेरी छड़ी चली। उनके साथ में जो और नहाने वाले लोग आए थे उन्होंने पूछा कि कौन छड़ी चली गई, तुम तो कोई छड़ी लाए नहीं थे। अरे अरे वो छड़ी देखो चली जा रही, वो अभी हमने पकड़ी थी छड़ी, किसी की आ गई थी और वो वहीं चली जा रही। कि छड़ी जाने किसकी छड़ी बहती चली आ रही थी, किसकी छड़ी कहाँ उन्होंने पकड़ ली और पकड़ते फिर हाथ से छूट गई और उसके लिए हाय हाय करने लगी, मेरी छड़ी चली गई, और दुखी भी हो गए। बस ऐसे ही संसार है, कहते हैं कि देखो इसमें ये तो प्रकृति का प्रवाह है। संसार क्या है? एक प्रकृति का प्रवाह है, काल का प्रवाह है, उसमें घटनाएं घटती जा रही, जाती जा रही, बनती जा रही, बिगड़ती जा रही, चेंजेस हो रहे हैं। उसी के बीच में आकर के आपने छड़ी की तरह से कुछ पकड़ने की कोशिश की, कुछ दिनों के बाद में छूट गई, आप आया करके रोने लगे। ये धृतराष्ट्र बुद्धि है। पहले ही से अगर ध्यान दें तो गीता तो ऐसा ग्रंथ है कि जितने ही आप ध्यान दोगे उतनी उसमें बातें आपको ज्ञान की बातें मिलेंगी, जीवन की मार्गदर्शन की बातें मिलेंगी। पहला अक्षर अगर धृतराष्ट्रवाच है तो उसमें भी बहुत बातें भरी हुई है। संजय जो है वो व्यास जी उसको दिव्य दृष्टि दे भी गए थे, और संजय ने अपने आप स्वयं भगवान के मुख से वो गीता सुनी, और सुनते सुनते संजय को भी सद्बुद्धि आ गई। अब संजय जब सुनाता है गीता की बात और उसके युद्ध की घटनाओं का सब वर्णन करता है संजय, तो उसका हृदय भगवान कृष्ण की तरफ हो जाता है, अर्जुन की तरफ हो जाता है। जब बोलता है तब वो धृतराष्ट्र को सुनाता, सब धृतराष्ट्र को है, लेकिन धृतराष्ट्र के पक्ष की बात रही बोलता। अब ये बात जहां कहीं भी देखो, जैसे दुर्योधन का वर्णन उसने किया कि दुर्योधन इस प्रकार से द्रोणाचार्य के पास गए और इस प्रकार से बोला, तो वहां पर भी जो कुछ बोला और जिस शैली में उसने वर्णन किया उसको आप देखो, और आगे की जो घटनाओं को आप देखो, तो ये पता लग जाएगा कि संजय जो है वो धर्म के पक्ष में है। और शायद उसका ये भी विचार हो कि धृतराष्ट्र अब भी बात को समझ जाए, संजय समझाने की कोशिश कर रहा है कि शायद अब भी धृतराष्ट्र को समझ में आ जाए, तो वो दुर्योधन को मना कर दें कि भाई देखो अब तुम युद्ध न करो, जीतने इतने वाले तुम हो रही, इससे अच्छा है कि ज्यादा विनाश न हो, तुम युद्ध ये जो है राज्य पांडवों को दे दो, तुम्हारे बस की बात नहीं इसमें युद्ध में जीतने की। लेकिन संजय को इतना कहने पर भी सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप में वर्णन करते हुए इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया, लेकिन धृतराष्ट्र ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और युद्ध तो अंत तक होते ही रहा, और उस युद्ध में सबका विनाश हो गया, सब मारे गए उस युद्ध में। अंत में कल देख रहे थे कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर के जब बोल रहा था तो दोनों तरफ की सेनाओं के वीरों का नाम उसने सुनाया, पांडवों की तरफ के बहुत से योद्धाओं के नाम उसने गिना दिए, और मानो ऐसा द्रोणाचार्य से कह रहा हो कि देखो ये सब बड़े बड़े बलवान वीर हैं, हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा इनसे युद्ध करने के लिए। और फिर ये भी कहा कि वैसे तो हमारी सेना बहुत बड़ी है, और फिर भीष्म पितामह इसके रक्षक हैं, इसलिए जो है सेनापति वही भीष्म पितामह थे शुरू में, इसलिए हमारी सेना जो है अजय है। ये श्लोक देखिए, दसवें श्लोक में कहते हैं, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, बलम बलम माने सेना, बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा रक्षित अपनी सेना होने के कारण से अस्माकम बलम अपर्याप्तम, अपर्याप्त मैंने विजय करने में अपर्याप्त है, मैंने कोई इसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, अजय है। लेकिन पांडवों की सेना के रक्षक भीम है, और उनकी उनके बल के मैंने सेना उधर भी की, उनकी जो पांडवों का बल सेना है उसके रक्षक भीम है, लेकिन वो पर्याप्त है, पर्याप्त है कि मैंने जो है वो उसके ऊपर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस तरह से वो दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को उत्साहित भी करता है कि जिससे उत्साहित होकर के वो युद्ध करें, थोड़े उनके मन में इन पांडवों के प्रति एक रोष भी पैदा हो, उनको ये लगता था, दुर्योधन को ये भी लगता था कि भीष्म और द्रोणाचार्य को पांडवों से कुछ उनका हृदय उसकी तरफ मुलायम पड़ता है, कोमलता लगती है, प्रियता लगती है इनको पांडवों से, ये जानते थे। यद्यपि ये हमारे पक्ष में हैं और का विरोध हमारा विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनका मन का एक कोना पांडवों के साथ ही है। द्रौपदी वाली जब घटना घटी थी राजदरबार में, उस समय भी ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह वो उपस्थित थे और वो सब घटना सब देखते रहे, ये दोनों लोग वहां बोले नहीं थे। अब भी ये समझ रहा दुर्योधन कि युद्ध क्षेत्र में भी ये हमारे साथ हैं और ये पांडवों का विरोध ही करेंगे, युद्ध करेंगे, हमको जिताने की कोशिश करेंगे ये। लेकिन एक बात उसको लगती थी, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना थोड़ा युद्ध करने में ढीले पड़ जाएं पांडवों से, अर्जुन से, इसलिए हमको पराजित न होना पड़े, इसलिए वो उनको बार बार उत्साहित कर रहा है। ये दुर्योधन की मना स्थिति का यहां तक वर्णन हुआ। अगले श्लोक से ये मालूम होता है कि दुर्योधन का मन बहुत प्रसन्न नहीं था, दुर्योधन का मन बहुत उत्साहित नहीं था, ये सूचना अगले श्लोक से मिलती है। देखिए,